अर्पिता जी ने उसको धमकी दी, जिसे सुनकर शान का भाव बदल से गया। उसे अब अर्पिता जी पर गुस्सा आने लगा था। सुबह से ये दूसरी बार था जब उन्होंने घर से जाने की बात की थी, और वो जानती थी कि शान उन्हें ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए वो जानबूझकर उसको इसी बात से धमका रही थी, उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर रही थी, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही थी। यही वजह थी कि वो अब उनकी बात से बुरी तरह चिढ़ चुका था, पर कुछ कह भी नहीं सकता था। शान ने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए नाराज़गी भरी निगाहों से अर्पिता जी को देखा, पर उनके भाव ज्यों के त्यों ही बने रहे। वो काफ़ी गंभीर लग रहे थे। शान चाहकर भी उनकी इस धमकी के आगे कुछ कह ना सका और गुस्से में दनदनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। आरवी जो सर झुकाए खड़ी दोनों की बातें खामोशी से सुन रही थी, जब उसके कानों में शान के कदमों की आहट पड़ी, जो उसे अपने करीब आते हुए महसूस हो रही थी, तो उसने निगाहें उठाकर देखा। शान सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था और अब बेहद गुस्से में उसके तरफ पड़ रहा था। आरवी ने उसका गुस्से से तमतमाया चेहरा देखा तो तुरंत ही अर्पिता जी की तरफ घूमते हुए बोली, बड़ी माँ, रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी उन्हें तकली। आरवी कहते हुए अचानक ही रुक गई और आंखें बड़ी बड़ी किए शान को देखने लगी, जिसने अचानक ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। उसने हड़बड़ी में निगाहें घुमाई तो वहीं खड़ी अर्पिता जी को देखकर उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने घबराकर शान को देखा और उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरवी के कहने का भी कोई असर नहीं हुआ। शान उसकी बात को अनसुना करते हुए उसको अपनी बाहों में उठाए ही आगे बढ़ चुका था। आरवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया कि बड़ी माँ के सामने उसे अपनी बाहों में उठाया। शायद इस लम्हे में वो अपनी असलियत भूल चुकी थी, भूल गई थी कि शान उससे सिर्फ और सिर्फ नफ़रत करता है। अभी वो जो भी कर रहा था, बस बड़ी माँ की वजह से कर रहा है। आरवी घबराई हुई सी शान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर अभी कोई भाव ही नहीं थे। उसने कस के आरवी को थामा हुआ था, जिस वजह से आरवी चाहकर भी उससे दूर ना जा सकी। शान उसे अपनी बाहों में उठाए रूम में पहुंचा और उसको बेड पर लगभग पटकते हुए गुस्से से गरजा, मेरी मजबूरी को मेरी परवाह समझने की भूल कभी मत करना। अगर बात बड़ी माँ की नहीं होती तो तुम वहीं मर भी जाती, तब भी मैं तुम्हारे पास नहीं आता। आरवी की आंखों में भरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। अब भी उसके दिमाग में वही सवाल था जिसका जवाब वो चाहती थी, पर शान उसे कुछ नहीं बताएगा, यही सोचकर खामोश रह गई। उसने पलटकर शान को कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुका लिया। शान चाहे जितने ही गुस्से में था, पर अब भी आरवी के आंसू उसके बर्दाश्त से बाहर थे। जैसे जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अपने साथ शान के गुस्से को भी बहाते जा रहे थे। चेहरे पर अब कुछ शान से भाव उभर आए थे। शान के हाथ आरवी के चेहरे की तरफ बढ़े, शायद वो उसके आंसू पोंछना चाहता था, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। भावनाओं को काबू करते हुए उसने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया और बेरुखी से अपना चेहरा घुमा लिया। तभी उसकी नज़र आरवी के पैरों पर पड़ी और अनजाने में वो साइड टेबल की तरफ पड़ गया। आरवी अब भी अपना सर झुकाए बैठी सिसक रही थी। तभी अचानक उसे अपने पैरों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ और उसने घबराकर अपने पैरों को पीछे खींचते हुए निगाहें उठाकर देखा तो शान उसके पैरों के पास खड़ा था। बेड पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था और उसने अपनी उंगलियों के बीच कॉटन को थामा हुआ था। आरवी ने अपना पैर पीछे तो खींचना चाहा, पर शान ने उसके पैर को कस के पकड़कर वापस सीधा कर दिया और डेटॉल लगे कॉटन से उसके जख्मों को साफ करते हुए नफरत भरे लहजे में बोला, ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है, जो कर रहा हूँ चुपचाप करने दो, क्योंकि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकूंगा। वो क्या है ना, पहले से घायल इंसान को मारने में वो मजा नहीं जो किसी स्वस्थ इंसान को चोट पहुंचाने में है, इसलिए मैं तुम्हें दर्द दूं उसके लिए पहले तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। आरवी शान की बात सुनकर एकदम शांत हो गई। उसे कार में कहीं शान की बात याद आ गई कि उसको दर्द देने का हक सिर्फ उसका है। आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए और चेहरे पर दर्द पसर गया। वो भीगी निगाहों से शान को देखने लगी, जो बिना किसी भाव के उसके पैरों के जख्मों को साफ कर रहा था। डेटॉल से जलन हो रही थी आरवी को, लबों से सिसकी निकल रही थी, पर उसे जैसे किसी बात का होश था ही नहीं, और ना ही शान को ही उसकी तकलीफ से कोई फर्क पड़ रहा था। शान ने उसके दोनों पैरों पर दवाई लगाकर पट्टी कर दी और फर्स्ट एड बॉक्स वापस ड्रॉअर में रखकर जैसे ही जाने को हुआ, उसके कानों में आरवी की रुंधी हुई सी आवाज पड़ी, मुझे वॉशरूम जाना है। तो चली जाओ, रोका तो नहीं है मैंने तुम्हें, जब रात के वक्त अंधेरे में अकेली इतनी दूर जा सकती हो तो बाथरूम तो चली ही जाओगी, वो तो कुछ ही कदमों की दूरी पर है। शान ने बिना उसके तरफ पलटे हुए बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, जिसमें उसकी नाराजगी भी झलक रही थी। उसका जवाब सुनकर आरवी के मन में एक टीस सी उठी, आंखें बरसने को तैयार हो गईं, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और जाते हुए शान को देखकर तड़पते हुए बोली, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है कि आज मुझसे इतनी नफरत करने लगे? एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपका मेरे प्रति रवैया इतना बदल गया? आखिर आरवी ने एक बार फिर मजबूर होकर उससे वही सवाल किया जिसका जवाब शान उसे दे ही नहीं रहा था। इस बार भी वही हुआ। शान उसके सवाल को अनसुना करते हुए तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया और आरवी नम आंखों से उसे खुद से दूर जाते देखती रही। अब तक के शान के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और आंखें कब बरस पड़ी उसे एहसास ही नहीं हुआ। शान का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आंखों के सामने एक बार फिर वही फोटो घूम गई जो उसने ठाकुर निवास में देखी थी और वो गुस्से में सीधे घर से बाहर निकल गया। पीछे खड़ी अर्पिता जी उसे आवाज देती रही पर उसको तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। गाड़ी में बैठकर उसने तेज रफ्तार में गाड़ी विला के मेन गेट की तरफ दौड़ा दी। पीछे गेट पर खड़ी अर्पिता जी, जिनके हाथों में खाने की ट्रे थी, वो परेशान सी जाती हुई गाड़ी को देखती रही। उनकी नजरों में तो सब अच्छा चल रहा था, फिर अचानक सब बिगड़ कैसे गया वो ये समझ नहीं पा रही थी। शान वहां से जा चुका था तो अर्पिता जी थके कदमों से वापस अंदर चली आईं। कुछ अंदर आने पर सामने नजर पड़ते ही उनके कदम ठिठक गए। सामने सब मौजूद थे। शान और अर्पिता जी की पहले ही बहस सुनकर वो सभी वहां आ गए थे, पर तब तक शान आरवी के साथ वहां से जा चुका था और अर्पिता जी किचन का रुख कर चुकी थी। कुछ देर बाद वो खाने की ट्रे लेकर किचन से बाहर निकली, पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही शान वहां पहुंचा और उनकी आंखों के सामने वो घर से बाहर चला गया। अर्पिता जी के रोकने पर भी नहीं रुका। ये देखकर सभी हैरान परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। अर्पिता जी वहां पहुंची तो सबकी सवालिया निगाहें उनके तरफ घूम गईं, जिस पर उन्होंने बेबसी से बस इतना ही कहा, हम कुछ नहीं जानते। इसके आगे कोई उनसे कुछ पूछ ही नहीं सका। अर्पिता जी ने अंशु को लिया और छाया को खाने की ट्रे पकड़ाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। आरवी नम आंखों से गेट को घूरे जा रही थी। कानों में शान के नफरत से कहे लफ्ज गूंज रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर गेट से अंदर आती अर्पिता जी और उनकी गोद में मौजूद अंशु पर पड़ी। आरवी ने तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछ लिया और लबों पर फीकी सी मुस्कान सजाते हुए अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ गईं।
अंशु तो आरवी को देखते ही खुश हो गई। जैसे ही अर्पिता जी आरवी के पास पहुंची, अंशु तुरंत ही आरवी के सीने से आ गई और उसको अपनी छोटी छोटी बाहों में कसते हुए सुबकते हुए बोली, आप कहाँ चली गई थी मम्मा? बेबी ने आपको इतना सारा मिस किया, आप बेबी को छोड़कर क्यों चली गई थी मम्मा? जाने अंशु ने उससे लिपटे हुए सुबकते हुए उससे कितनी ही शिकायतें कर दी। आरवी को अब एहसास हुआ कि अपने और शान के रिश्ते में आई कड़वाहट को उसने अपनी बच्ची पर भी असर डालने दिया। उसके कहने पर घर से चली गई बिना ये सोचे कि उसके जाने के बाद अंशु कैसे रहेगी उसके बिना। शान को अपनी पत्नी से प्यार नहीं, पर अंशु तो अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रहती। फिर कैसे उसने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? पर सोचती भी कैसे कुछ जब उसके दिलो दिमाग पर शान की कही बातें हावी हो चुकी थीं। दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। अंशु की मासूमियत भरी शिकायतें और अपने लिए उसका प्यार देखकर आरवी की आंखें छलक आईं। उसने उसको अपनी बाहों में छुपा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी बच्चे, अपनी मम्मा को माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई उनसे। माफ कर दीजिए बेटा, आई प्रॉमिस, अब मम्मा कभी आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। चाहे किसी की कितनी ही नफरत क्यों ना सहनी पड़े, पर अब मम्मा कभी आपसे दूर नहीं जाएंगी, कभी नहीं। उसने जानी कितनी ही बार उसके चेहरे को चूम लिया। अर्पिता जी नम आंखों से उन दोनों को देख रही थीं। कुछ देर बाद आरवी कुछ शांत हुई, उसने अंशु को भी चुप करवाया, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, आप नाराज हैं मम्मा से? नो, अंशु ने मासूमियत से इनकार में सर हिला दिया, फिर अपनी नन्ही हथेली उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, मम्मा प्रॉमिस करिए कि आप दोबारा कभी अंशु को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। हाँ बच्चे, अब मम्मा कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाएंगी, आरवी ने उसकी हथेली को थामकर वादा कर दिया और प्यार से उसके सर को चूम लिया। तो नन्ही अंशु की लबों पर मुस्कुराहट खेल गई। अगले ही पल उसने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, मम्मा भूखू लगी है। टू बी कंटिन्यूड।